नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एंड सबका दोस्त योगेश। मोबाइल वाणी पर पक्ष विपक्ष में यह विषय है कि क्या यह देश संविधान से चलता है। यह देश संविधान से चलता है, यह एक लाइन जो हम हर एक दूसरे से किसी न किसी के मुंह से सुनते ही रहते हैं। संविधान पर इतनी आस्था के बाद भी देश में संवैधानिक मूल्यों की भावनाओं का अभाव है। संविधान के प्रति पैदा हुए इस अभाव के भाव के लिए वही लोग जिम्मेदार है जो हर एक बात पर कहते हैं कि यह देश संविधान से चलता है। आज हमारे साथ इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनुप सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
जी नमस्कार योगेश भाई।
सर, क्या देश संविधान से चलता है, कितना सही देखते हैं सर?
कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत हो, उसके पास एक संविधान होता है, एक रास्ता होता है, एक दस्तावेज होता है। और चाहे वो लिखित दस्तावेज हो चाहे अलिखित दस्तावेज हो, लेकिन एक उसके पास दस्तावेज होता ही है और उसी के माध्यम से वो चलता है और उसी के तहत व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। राजतंत्र को भी उठा करके देख लीजिए, तो जो राजतंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, उनके पास भी एक इस प्रकार की व्यवस्था होती थी कि हमें किस प्रकार से अपने राज्य को चलाना है, किस दिशा में लेके जाना है और राज्य के अंदर रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था करना है। और आज लोकतंत्र के अंदर संविधान की बात हो रही है, तो कोई भी देश अपना एक संविधान रखा है, एक विजन रखा है और उसी के माध्यम से वो चला रहा है। दिक्कत इस बात की नहीं कि संविधान के माध्यम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समस्या यहाँ आ रही है कि क्या हम संविधान का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो संविधान का पालन करना केवल सरकार का कर्तव्य नहीं होता है और यह सरकार का नैतिक दायित्व नहीं होता है। सरकार का एक दायित्व होता है कि उस पर चले और उसको लेकर के चले, उसके माध्यम से चले, परंतु सरकार को चलाने वाली तो जनता होती है। क्या जनता संविधान सम्मत व्यवहार कर रही है? क्योंकि यदि जनता संविधान सम्मत व्यवहार करती और संविधान के अनुसार से सरकार को चुन करके देती, तो आप देखते कि यह कहने की नौबत ही नहीं आती कि देश संविधान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देश स्वतः संविधान के माध्यम से चलने लगता, परंतु आज यदि संविधान की कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही है और संविधान को नकारा जा रहा है, तो उसमें केवल और केवल सरकार की भूमिका, प्रशासन की भूमिका, नौकरशाही की भूमिका, मीडिया की भूमिका नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ आम जनता और आम मतदाता की भी भूमिका है, आम नागरिक की भी भूमिका है कि वह संविधान से स्वतः दूरी बना ली है, वह संविधान को पढ़ना नहीं चाहती है और संविधान के अनुसार चलना नहीं चाहती है। और आज भी देश संविधान के अनुसार चल रहा है, ठीक है, उसको कुछ अपने तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले दिन में भी देश संविधान के अनुसार ही चलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हर सत्ता जो बदलती है या सत्ता में आने वाले लोग अपने अपने नजरिए से संविधान को देखने का प्रयास करते हैं, परंतु लोकतंत्र के अंदर किसी सत्ता की इतनी ताकत नहीं है कि वह संविधान को बदल दे या संविधान को खारिज कर दे। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता के अंदर शक्ति होता है, सरकार के अंदर नहीं होता है, और सरकार देश नहीं होती है, देश तो देश में रहने वाली जनता की होती है।
जी सर। सर, उदारीकरण के दौरान में आज के शीर्ष नेतृत्व के नेता का नाम सामने आया था और उस दौरान उन्होंने जब तक पाक साफ नहीं हो जाते तब तक संसद में वापस नहीं लौटने की बात कही थी। आज ऐसी नैतिकता कहाँ देखते हैं सर?
जो उस समय के नेता थे और आज के नेताओं में अंतर आया है।
जी,
जो पहले नेता बनते थे, आप उनकी स्थिति को उठा करके देखिए, तो वह देश की सेवा और जनता की सेवा करने के लिए नेता बनते थे। वह अमीर बनने के लिए नेता नहीं करते थे, और वो जो लोग नेता बनते थे बड़ी अभाव से निकल करके नेता बनते थे, अपना सब कुछ त्याग करके नेता बनते थे और कमाने के लिए नेता नहीं बनते थे। आज जो नेता बन रहा है वो कमाने के लिए नेता बन रहा है। मैंने पहले ही सवाल के आपको जवाब दिया कि आज जो संविधान की धज्जियां उड़ रही है उसमें जनता और मतदाता की सबसे बड़ी भूमिका है। आप आज देख लीजिए कि चुनाव कौन जीत रहा है। जो अरबों रुपया खर्चा कर रहा है, कई करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, वो चुनाव जीत रहा है। और एक ईमानदार व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो चुनाव हार जाता है। और पहले के दौर में, उदारीकरण के पहले के दौर में आप जाकर के देखेंगे, जब राजनीति का कारपोरेटीकरण नहीं हुआ था, राजनीति का पूंजीकरण नहीं हुआ था, उस समय के आप उठा करके देखेंगे तो उस समय के मतदाता यह देखते थे कि सबसे गरीब प्रत्याशी कौन है, हमारे साथ खड़ा होने वाला प्रत्याशी कौन है, हमारे सवालों पर जेल जाने वाला प्रत्याशी कौन है। हमारे लिए पुलिस की लाठी खाने वाला कौन सा प्रत्याशी है और हम लोगों को साथ लेकर के चलने वाला कौन सा प्रत्याशी है, उसको मतदान करते थे। आज तो आज के मतदाता जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हैं, उसके साथ साथ यह देखते हैं कि पैसे सबसे ज्यादा खर्च कौन कर रहा है, यह देखते हैं कि हमको शराब कौन पिला रहा है, और यह देखने का काम करते हैं कि हमारा जो नेता ऊपर बैठा है उसने किसको प्रत्याशी बनाया है, हमारी जाति का है कि नहीं है। तो जब इस आधार पर आप चुनाव चुन करके देंगे तो नेता के अंदर नैतिकता कहाँ से रहे? आज नैतिकताओं के अंदर नैतिकता का लोप नेताओं के अंदर से इसलिए हो रहा है कि मतदाता खुद नहीं चाह रहे कि कोई नैतिक व्यक्ति चुनाव जीत करके आए।
जी
खैर, यदि ईमानदार व्यक्ति चुनाव हारता है तो व्यक्ति चुनाव नहीं हारता है, उस कंस्टिट्यूएंसी के उस संसद क्षेत्र का व्यक्ति चुनाव हारता है।
जी
परंतु आज नेताओं के अंदर नैतिकता का लोप आई है, उसका एक कारण है कि आज के नेताओं में देश सेवा करने की इच्छा नहीं है, राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा नहीं है, राष्ट्र बनाने की इच्छा नहीं है, बल्कि उनकी तो इच्छा है कि हम अनवरत कुर्सी से चिपके रहे, कुर्सी के साथ बैठे रहे और धन कमाते रहे, क्योंकि उनको अगले चुनाव की तैयारी करना होता है और हरदम चुनाव हो रहा है। भारत एक ऐसा देश बन गया योगेश भाई जहां प्रतिदिन चुनाव हो रहा है और प्रतिदिन लोग चुनाव लड़ने के मूड में रह रहे हैं। तो जब प्रतिदिन चुनाव होगा और प्रतिदिन चुनाव लड़ने के मूड में रहेंगे और जहां का मतदाता लालची हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, वहां नेताओं में नैतिकता नहीं हो सकती है। तो नेताओं में अगर नैतिकता लाना है तो मतदाता को चाहिए कि संविधान सम्मत व्यवहार करे और उस
जी
व्यक्ति को चुनाव हरा दे जो व्यक्ति करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्चा कर रहा है, और उस
जी
व्यक्ति को चुनाव जिताए जो व्यक्ति गरीबी से गरीब है, जो व्यक्ति जनता के सवाल पर चुनाव लड़ रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है। तो आज
जी
जो नैतिकता का लोप हो रहा है उसमें सबसे बड़ा मतदाताओं की भूमिका है।
जी सर। सर, हाल ही में तेलंगाना में एक प्रोटीन स्पीकर के सामने शपथ ग्रहण के दौरान शपथ लेने से मना कर दिया गया। वही अभी शीर्ष नेतृत्व में के ही उस जनता के प्रतिनिधि ने यह कहकर इससे शपथ लेना ठुकरा दिया क्योंकि वे एक मुसलमान थे। सर, कैसे देखते हैं सर संविधान की धारणाओं के अनुरूप इस कथन को या जो प्रक्रिया थी उस दौरान इस।
यदि संविधान के अंतर्गत वहां के विधानसभा का स्पीकर चुना गया है तो वहां के जनता के माध्यम से चुना गया है, क्योंकि
जी
तो जनता ने उसको विधायक बनाई है और विधायक दल के लोगों ने, सत्ता दल के लोगों ने उसको अपना स्पीकर चुना है।
जी
यह तो गलत है कि उसके सामने हम शपथ नहीं लेंगे। यह तो राजनीति को सांप्रदायिकरण करने का तरीका है और यही आज देश के अंदर चल रहा है। परंतु सवाल यह है योगेश भाई कि राजनीति का ध्रुवीकरण कर कौन रहा है, राजनीति का सांप्रदायिकरण कौन कर रहा है? क्या केवल एक ही वर्ग है जो राजनीति का सांप्रदायिकरण कर रहा है? यह तो खेती की जा रही है राजनीति के सांप्रदायिकरण का, राजनीति के जातिकरण का, राजनीति के ध्रुवीकरण का। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जनता क्या चाहती है, नेता क्या चाहते हैं, ये लोग क्या देश बनाने वाले हैं कि देश को मिटाने वाले हैं। यदि आप यही पैदा करते रह जाएंगे कि हम इस जाति के सामने खड़ा होकर शपथ नहीं लेंगे, हम उस जाति के सामने खड़ा होकर के शपथ नहीं लेंगे, तो आप भारत को लेकर के कहां जाते थे? हम लोगों के नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
जी
वह कहते थे कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तोड़ना होगा और यह उस समय टूटेगा जब मुस्लिम नेता हिंदू के लिए लड़ाई लड़ेगा कि नहीं हमें हिंदू को बचाना है, और हिंदू का नेता इसलिए लड़ेगा कि नहीं हमें मुस्लिम को बचाना है, तब जाकर के राजनीतिक ध्रुवी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण टूटेगा। परंतु आज क्या हो रहा है? आज मुस्लिम समुदाय मुस्लिम नेता के साथ खड़ा हो जा रहा है और हिंदू समुदाय हिंदू नेता के साथ खड़ा हो जा रहा है। तो यह ऐसे टूटेगा नहीं, यह तो एक मिला जुला इनका खेल है कि आप अपने वर्ग का वोट ले लीजिए, मैं अपने वर्ग का वोट ले लूं और
जी
सत्ता में बने रहे। यह सत्ता में बने रहने का खेल है, परंतु जरूरत इस बात की है कि आप जैसे पत्रकार, नौजवान, पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े साहित्यों को जनता के बीच में भेजे और इस राजनीतिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण को तोड़े, ताकि आने वाले दिन में जो भारत का आज चिर हो रहा है संविधान का, उसको बचाया जा सके। और यह निहायत गलत हो रहा है कि किसी जाति के स्पीकर के सामने लोग शपथ नहीं ले रहे। आप शपथ लीजिए, स्पीकर किसी दल का नहीं होता है, स्पीकर किसी जाति का नहीं होता है, स्पीकर किसी धर्म का नहीं होता है। आप शपथ लीजिए, सदन में जाइए और स्पीकर अगर आपके साथ गलत कर रहा है तब गलत के विरोध करिए, परंतु आप पहले ही जाकर के कह दे कि नहीं, इस जाति के खिलाफ हम शपथ नहीं लेंगे, तो भारत के संविधान के सम्मत नहीं है, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के सम्मत नहीं है, यह अपने वीर हजारों शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों के लायक नहीं है। यह तो
जी सर,
कहीं ना कहीं भारत को घोर सांप्रदायिकरण
जी
बनाने का तरीका है।
सर, संसद में जब भी कोई नए कानून बनाए जाते हैं तब संसदों को सही तरीके से बोलने नहीं दिया जाता है। जो कानून बनाकर जनता के हित में कार्य करते हैं, क्या यह सब सांसदों को चुप रखने के लिए, क्या विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं?
यह एक तरीका जो अपनाया जा रहा है आज का दौर देखिए, विशेष करके 2014 के बाद का जो दौर आया है, और जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी माने दुनिया के स्तर के नेता है, दुनिया के सबसे बड़े नेता है, उनके नेतृत्व में आप देखिए कि विपक्षी पार्टियों को बोलने पे रोक लगाया जा रहा है। दूसरी बात कि वो पूरा यह कोशिश कर रही है आज की सत्ता कि हम नियम कानून कायदे उस समय बनाए जब देश के जब सदन के अंदर विपक्ष बैठा ही ना हो, और उस समय बनाते हैं। अभी आप देखे होंगे जब मणिपुर वाले बिल पे बहस चल रही थी और जब विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़ा हुआ बोलने के लिए तो उसके माइक को बंद कर दिया गया, आम आदमी पार्टी के सांसद थे उनको संसद से बहिष्कार कर दिया, हटा दिया गया। तो यह एक प्रकार के नया कल्चर डेवलप किया जा रहा है और जिसमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष कोई भूमिका ही नहीं है, जो है वो सत्ता है, तो यह देश के संविधान सम्मत नहीं है। परंतु योगेश भाई, क्या इस पे विपक्ष लामबंद हो रहा है? क्या विपक्ष मिलकर के काम कर रहा है? आप देखिए कि इंडिया नाम का गठबंधन बना हिंदुस्तान के अंदर, परंतु उस गठबंधन ने आज तक कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया है? उस गठबंधन ने यह बताया कि हम भारत के अंदर क्यों गठबंधन बना रहे हैं? उस गठबंधन के आप बैलोज को पढ़िए तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमें मोदी को हराना है, हमें भाजपा को हराना है। बाकी वो गठबंधन का कोई नाम नहीं लेते कि उस गठबंधन का हाथ क्या है, उस गठबंधन का पैर क्या है, उस गठबंधन का सिर क्या है, उस गठबंधन का कार्यक्रम क्या है। अगर आप भारत के राजनीति को ठीक से पढ़ेंगे और गठबंधन के राजनीति को विशेष करके योगेश भाई, तो गठबंधन राजनीति के जनक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और उन्होंने जो गठबंधन बनाए थे वह गठबंधन बनाए थे अपार सत्ता के खिलाफ, अजेय सत्ता के खिलाफ, और कार्यक्रम के आधार पर गठबंधन बनाए थे। उन्होंने जो कार्यक्रम तय किए वह कार्यक्रम तय किए 3 महीने का कार्यक्रम, 6 महीने का कार्यक्रम, और जब देखे कि हमारी ही सरकार काम नहीं कर रही है तो अपने ही लोगों से बोले कि अभी सरकार को गिराओ, ये काम नहीं कर रही है, गठबंधन के खिलाफ जा रही है, और आप घूम घूम के अपील किए, अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किए। परंतु आज का जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है यह कुर्सी का गठबंधन है, और जब कुर्सी के लिए सत्ता के लिए गठबंधन बनेगी तो विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी, और सारा विपक्ष ऊपर से दिखा रहा है कि हम एक है परंतु अंदर से एक नहीं है, और जिसका नतीजा आप मध्य प्रदेश के चुनाव में देखे होंगे, यहाँ गठबंधन की सबसे जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता यहाँ कहे अपने गठबंधन के लोगों को कि हम इन लोगों को नहीं जानते, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, और गठबंधन के लोगों ने कहा कि कांग्रेस को हरा दो। तो इस प्रकार से जब विपक्ष बटा रहेगा तो सत्ता को बल मिलता है, और सत्ता जो है तानाशाह तो हो ही रही है, उसके तानाशाही को रोकना है तो गठबंधन को अपना धर्म निभाना होगा, और गठबंधन को जनता के बीच में जाके एक सिद्धांत और कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा, तब जा करके विचार अभिव्यक्ति की आजादी बचेगी। और विचार अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अभी जरूरी होता है कि आप सत्य बोलिए। विपक्ष का काम सकारात्मक भूमिका निभाना होता है, यदि सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको कहना चाहिए कि अच्छा काम करे, उसको बधाइयां देनी चाहिए, परंतु विपक्ष सरकार की अच्छाई पर भी नहीं बोलना चाहती है और बुराई पर तो विरोध कर ही रहा है।
जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर क्या यह देश संविधान से चलता है इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर, मोबाइल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जहाँ एक तरफ संविधान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पे आप जैसा पत्रकार संविधान को लेकर के चर्चा कर रहा है, इसके लिए आपको और मोबाइल वाणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, मोबाइल सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।